لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللهم صل على محمد وآل محمد. أذان محترم، اختیارات و تصرفات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان سے جس گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ اس سلسلے کی پانچویں مجلس عزا ہے، اور آج کی حد تک جو آپ کی خدمت میں عرائض کو ہدیہ کرنا ہے، اس کا آغاز کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا، وہ قرآن کریم کی آیت کے جو وافی ہدایت ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد بابرکت ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم: قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتا فی القربا. کہ کہہ دیجئے اے حبیب، لا اسألکم علیہ اجرن، کہ ہم آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے کار رسالت پر، الا المودت فی القربا، کہ مودت قربا کی مودت، اقربائے رسالت ماب کی مودت، رسول کے اہل بیت کی مودت درکار ہے. اذان محترم، اس گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت سے کیوں کیا گیا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. ہم نے پچھلی مجالس میں بھی عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ پروردگار نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا جو لازمہ رکھا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ آپ نے، ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت کو اپنے دل میں رکھنا ہے. یہ ایک اتنی اہم عبادت اور یہ ایک اتنی اہم ذمہ داری ہے ہماری، کہ جس کے ڈائریکٹ اثرات ہیں ہماری اور آپ کی زندگیوں پر. یقیناً وہ افراد کے جو رسول کی قربا سے مودت و محبت رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کی برکت کیا ہے اس کا کیا کہنا. لیکن یہ ایک ایسا ٹول ہے، یہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ جو انسان کو راہ حق پر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ نماز کی راہ پر چلنے والا انسان کبھی اس طرح سے بہگ جائے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور گناہ بھی کر رہا ہو، اور نماز بھی پڑھ رہا ہو اور راہ حق سے ہٹا ہوا بھی ہو، نماز بھی شدت پر ہو और वो काम के जो शरीयत इस्लामिया में नहीं है वो भी शिद्दत पाऊं। लेकिन जो मवद्दत कुर्बा अपने दिलों में रखते हैं, परवरदिगार आलम ने उनके लिए खास अपनी रहमत का ऐसा इंतजाम रखा है कि चाहे देर सवेर सही मगर वो राह हक पर जरूर आ जाते हैं। अब उसकी बहुत सारी मिसालें, पिछले दिनों जो एक मिसाल आई थी कि एक चोर मौलाई कायनात अलैहि सलाम की खिदमत में आता है और आने के बाद ये कहता है कि मौला मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे हाथ काटें, आप मुझे चोरी की सजा दें, मैंने चोरी की है। कौन सी ऐसी चीज है जो उसे लेकर आ रही है मौलाए कायनात अलैहि सलाम के पास कि वो अपना जुर्म, अपने जुर्म का इकरार कर रहा है, अपना जुर्म कन्फेस कर रहा है मौला की बारगाह में। जनाब हुर जो तशरीफ लेकर आ रहे हैं मौला अबा अब्दुल्ला अलैहि सलाम की बारगाह में, कौन सी चीज है कि जो हुर को वहां से यहां लेकर आ रही है, जबकि सिनेरियो ऐसा नहीं है कि जहां वो था वो जगह छोड़कर इमाम हुसैन अलैहि सलाम के पास आए। खतरा शक कि मुझे कबूल किया जाएगा नहीं कबूल किया जाएगा, लेकिन चूंकि मारिफत के अंदर यकीन का ऐसा उंसुर हुर के मौजूद था कि जानते हैं कि अपने चाहने वालों को और जो दर पर आ जाएं ये वो दरवाजा नहीं है कि जो किसी को खाली लौटा दे। तो मवद्दत कुर्बा, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मवद्दत को हम और आप हल्का ना समझें, इसको हम कम ना समझें। इतनी ताकतवर चीज है कि जो अल्लाह से मिलाने वाली चीज है, राह हक पर साबित कदम रखने वाली चीज है। और अब इसके हवाले से बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर इतना कि वो चीज के जो तमाम के तमाम रसूल के कारे रिसालत का अजर बन रही हो, रसूल की इतने सालों की मेहनत की मजदूरी बन रही हो, वो चीज आम चीज नहीं होगी, वो चीज बड़ी अहम चीज होगी। और वही चीज है मवद्दत फिल कुर्बा। परवरदिगार आलम चाहता तो यहां कह सकता था कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला तक्वा, अल्लाह चाहता तो ये कह सकता था कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अमल, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला ताआ। मगर ये सारी लफ्ज़े अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं की। परवरदिगार आलम ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, यानी कि दीन इस्लाम के तमाम अहकाम, पूरा का पूरा कवानीन शरीयत, पूरा का पूरा कानून शरीयत एक पलड़े पर है मीजान के, और दूसरे पलड़े पर जो चीज है उसका नाम है मवद्दत कुर्बा, मवद्दत फिल कुर्बा। ये बात याद रखिएगा कि ये जितनी भी इबादतें हैं, ये जितने भी अरकान इस्लाम है, ये पूरा का पूरा कानून इस्लामी है, ये जिस्म है और इसकी रूह का नाम है मवद्दत फिल कुर्बा। ये हार्डवेयर है और इसका सॉफ्टवेयर के जो इसको रन करता है, जो इसको कारामद बनाता है, कि जिसका ना होना इसे नाकारा बना देगा, वो अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत है। अगर पूरे के पूरे दीन इस्लाम के कानून के अंदर, अरकान इस्लाम के अंदर, अफआल इस्लाम के अंदर, अजकार इस्लाम के अंदर, अगर आमाल इस्लाम के अंदर अगर मवद्दत फिल कुर्बा का सॉफ्टवेयर ना हुआ तो ये हार्डवेयर सिर्फ और सिर्फ एक मुर्दे की हैसियत रखेगा। जब तक इसमें मवद्दत फिल कुर्बा की रूह ना फूंक दें तब तक इसके अंदर हरकत नहीं आएगी, इसमें जान पैदा नहीं होगी। और अगर कोई दिल में मवद्दत रखे और इनके दर पर आ जाए तो वो कैसा इस्तकबाल करते हैं और उसमें उनका क्या इख्तियार और क्या तसर्रुफ मौजूद है, वो उसकी भी झलक इसके अंदर नजर आ जाएगी। तो आइए देखते हैं मौला सैयद साजिदीन आका इमाम जैनुल आबिदीन अलैहि सलातो वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला का दौर है। ये वाकया शेख फखरुद्दीन तुरही ने अपनी किताब मुंतखब, जिसे मुंतखब तुरही कहा जाता है, उसमें भी लिखा। बिहार के अंदर भी ये वाकया मौजूद कि मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम के पास बल्ख शहर से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स हर साल हज पर जब भी आता है तो मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा उनकी ज्यारत के लिए भी हज के बाद जरूर आता है। और एक साल जब वो मौला वाका की खिदमत में हाजिरी देने के बाद आया है, अच्छा जब भी आता है तोहफे तहाइफ मौला के लिए लेकर आता है। एक साल ऐसा हुआ कि जब ये पलटा है अपने वतन बल्ख वापस आया है तो उसकी जौजा ने ये कहा कि तू, मैं देखती हूं कि हर साल जब भी जाता है हज पर तोहफे तहाइफ लेकर जाता है और जहां से तू आता है, जिनके लिए तू तोहफे लेकर जाता है, वहां से कुछ कभी तोहफे लाते हुए मैंने तुझे नहीं देखा। एक मरतबा ये कहता है कि तू क्या कह रही है, तू जानती भी है कि मैं किसके पास जाता हूं, क्या तू उन्हें जानती भी है कि ये तोहफे मैं किनके लिए लेकर जाता हूं। कहा नहीं, मैं नहीं जानती, इसीलिए तो पूछ रही हूं कि वो कौन है कि जिनके लिए तू तो तोहफे लेकर आता है, वो कभी तुझे कोई तोहफा नहीं देते। ये कहता है कि वो कौन है जानती है, वो है हमारे इमाम, वो अल्लाह की हुज्जत है जमीन पर, खलीफतुल्लाह है वो फिल अर्ज, हमारा ख्याल रखने वाले हमारे हालात से आगा हैं, वो हमारे और आपके मौला हैं। बस यहां पर खामोशी हो गई, खत्म हो गई बात। अब जब ये अगले साल, एक साल पूरा गुजरा, अगले साल जब ये दोबारा हज पर गया है मौला के लिए, फिर तोहफे तहाइफ लेकर गया है, हज मुकम्मल हुआ है, फिर हज के बाद मक्का से जब मदीना मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम आका और मौला तशरीफ लेकर आए, तो ये भी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ साथ मदीना तशरीफ ले आया, यानी मदीना आ गया मौला की खिदमत में हाजिरी के लिए और ज्यारत के लिए मौला की। जब ये पहुंचा है तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इसे जोर देकर अपने दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बिठाया। जब ये मौला के दस्तरखान से खाना तनावुल फरमा रहा था, कर रहा था गजा, तनावुल कर रहा था, खा रहा था खाना, इमाम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि सब गजा तनावुल कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं, अब मौला अपनी जगह से बुलंद हुए और दस्ते मुबारक को धोने के लिए मौला उस मकाम पर गए कि जहां पर एक जर्फ, एक प्याला पानी का कि जिसके जरिए से हाथ धोए जाते थे, धुलाए जाते थे, उस दौर के अंदर वो रखा हुआ था। मौला हाथों को धोने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। ये शख्स जो हर साल हज पर जाता है और मौला की खिदमत में आता है हाजिरी देने के लिए, ये दौड़कर मौला के पास आया और इसने वो प्याला मौला के दस्ते मुबारक से ये कहकर इजाजत मांग कर लिया कि आका मैं आपके हाथ धुलाना चाहता हूं। और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौला के दस्ते मुबारक पर पानी डालने लगा ताकि मौला अपने हाथों को धो ले। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू हमारा मेहमान है, ऐसा क्यों कर रहा है। कहा मौला मैं यहां पर मेहमान की हैसियत से नहीं आता, मैं अगर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं तो अपने काबाए अकीदत की जियारत के लिए आता हूं, अपने किबलाए ईमान की जियारत के लिए आता हूं। मौला मैं आपकी जियारत के लिए आता हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिरी के लिए मुशर्रफ होता हूं मौला, और यह मेरी सआदत है कि मुझे यह मौका मिल जाए, मुझे यह तौफीक मिल जाए कि मैं आपके हाथों पर पानी डालूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सआदतमंद है, तू खुश नसीब है, किस्मत वाला है, और परवरदिगार आलम तुझे इतना अता करेगा कि तू खुश हो जाएगा। यह जुमला मौला ने इरशाद फरमाया कि खुदा तुझे इतना अता करेगा कि तू खुश हो जाएगा। यह कहकर इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब सिनेरियो यह है कि एक बर्तन नीचे रखा हुआ है कि जिसमें पानी गिर रहा है, और एक बर्तन उस शख्स के हाथ में है, उस हाजी के हाथ में है कि जो इमाम की ज़ियारत के लिए हर साल आता है, और वो साफ पानी उसमें से डाल रहा है, और मौला के दस्ते मुबारक से मस होने के बाद जो पानी है वो नीचे प्याले में जमा हो रहा है, मौला के हाथों का धोवन। अब जैसे ही मौला के दस्ते मुबारक से लगकर वो पानी नीचे जमीन पर गिरता है, यानी जमीन पर नहीं प्याले में गिरता है, जमा होता है, इमाम अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि प्याले में क्या है, प्याले में क्या जमा हो रहा है। वो शख्स कहता है मौला पानी है। कहा गौर से देख, सिर्फ पानी नहीं है, सुर्खी रंग के याकूत भी मौजूद हैं इसी पानी के अंदर। और जैसे ही उसने देखा सुर्ख रंग के याकूत मौजूद थे, रेड एमरल्ड्स मौजूद है पानी के अंदर। कौन सा पानी है? ये मौला के दस्ते मुबारक का धोवन है, ये वो पानी है कि जो मौला के हाथों से मस होने के बाद अब प्याले में जमा हो रहा है। एक मर्तबा इमाम ने इरशाद फरमाया पानी डाल, उसने और पानी डाला। अब मौला ने सवाल किया आप बता कि जर्फ में क्या है, नीचे पड़े हुए प्याले में क्या है। कहा मौला पानी है और सुर्ख रंग के याकूत है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं नहीं गौर से देख, पानी है, सुर्ख रंग के याकूत हैं और सब्ज रंग के जमरूद हैं, यानी कि ग्रीन एमरल्ड्स, सब्ज रंग के जमरूद के पत्थर मौजूद हैं, बेशकीमत पत्थर। ये मौला के हाथों से मस होकर गिरने वाले पानी का माजरा है, उसका अंदाज है। देखकर एक मर्तबा हैरान हुआ, मौला ने कहा पानी डाल, और पानी डाल। अब जब उसने पानी डाला तो इमाम अलैहि सलाम ने पूछा, अब बता आप क्या है? कहा कि मौला पानी है, सुर्ख याकूत है, सब जमरुद है। तो एक मरतबा इमाम अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, गौर से देख, साथ ही साथ सफेद रंग के दुर भी मौजूद हैं अंदर, व्हाइट कलर के पर्ल्स जो होते हैं वो भी मौजूद हैं। उसने देखा मौजूद है। मौला के कहने से पहले नहीं है, मौला के अर्ज करने के बाद मौजूद है। या ये कह लीजिए कि यहां पर जुबाने सैयद सज्जाद से निकला और वहां परवरदिगार आलम ने पूरा किया। अभी तक सिर्फ पानी था, जुबाने मुबारक के सैयद सज्जाद से याकूत निकला या वहां पर याकूत आ गया। यहां पर सब जमरुद निकला, वहां पर सब जमरुद आ गया। यहां पर सफेद दुर जारी हुआ, जुबान पर आया और वहां पर सफेद दुर मौजूद है। अब जब इमाम अलैहिस्सलाम ने ये अपने हाथों को धो लिया, मौला ने उस प्याले को उसकी तरफ किया और कहा कि बसद माजरत, तू तो जानता ही है कि हम दुनिया से कितने बेरगबत हैं, दुनिया की तरफ हमारी रगबत नहीं है। बस अब ये कर ले कि ये जो मोती और ये पत्थर हैं ये ले जाकर अपनी जौजा की खिदमत में पेश कर देना हमारी तरफ से, और यही उसके लिए तोहफा होगा, और उम्मीद है कि उसके बाद उसे हमसे कोई शिकायत ना रहेगी कभी भी। ये जुमला इमाम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, नहीं मालूम उस मर्द बल्खी यानी बल्ख से आने वाले इस मर्द की क्या शर्मिंदगी का आलम होगा। वो ये लेकर पत्थर गया। जब इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत से ये पत्थर जमरुद और ये सब कुछ लेकर गया है, अपनी जौजा की तरफ पेश किया और कहा कि ये मेरे मौला ने तेरे लिए भिजवाए हैं, और कहा कि ये अपनी जौजा को दे देना, बसद माजरत, चूंकि हम दुनिया से बेरगबत हैं लेकिन ये तेरे लिए, परवरदिगार आलम ने जो हमें इख्तियार दिया है वो इख्तियार तो सारी कायनात पर मौजूद है, मुहित है, लेकिन ये जो छोटा सा तोहफा है ये तेरी जौजा के लिए, ताकि उसे हमसे शिकायत ना रहे। जैसे ही उसने ये पत्थर देखे एक मरतबा, उसका दिल ऐसे तब्दील हुआ। कहती है कि अब याद रखिएगा ऐ शौहरे नामदार, अगले साल आप अकेले हज पर नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं अपने मौला और आका की जियारत के लिए जाना चाहती हूं, मैं भी उनके चेहरे अनवर की जियारत से मुशर्रफ होना चाहती हूं। वो बात कि जो कमरे के अंदर सिवाय मेरे और आपके कोई नहीं जानता, जो जानता है वही हो सकता है कि जो हमारा और आपका इमाम हो, जो हम पर हक के तसर्रुफ रखता हो, कि जिसे परवरदिगार आलम की जानिब से हम पर इख्तियार और विलायत अता हो। अगला साल आया, ये चले, और चलने के बाद हज किया, हज से फारिग हुए, मदीना मुनव्वरा की तरफ चले हैं। रास्ते में ये औरत बीमार हो गई, मदीना से बिल्कुल पहले ही औरत बीमार हो गई। बड़ा इलाज किया, बहुत कोशिश की कि ठीक हो जाए, रूबा सेहत हो जाए, मगर ये सेहतयाब ना हो सकी, यहां तक कि उसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया और ये शौहर परेशानी के आलम में मौला इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की खिदमत में आया, ताकि जनाजे की तकफीन की और गुसल की और तदफीन की तैयारी की जा सके। जब ये आया है, मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलातो वसलाम ने कहा कि जरा सा ठहर जा। ये कहकर इमाम अलैहि सलातो वसलाम घर के कोने में तशरीफ ले आते, मुसल्ले इबादत को बिछाते हैं, दो रकत नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज मौला सज्जाद अलैहि सलाम की खत्म होती है, मौला आकर इस शख्स से कहते हैं कि जा, परवरदिगार आलम ने तेरी जौजा को जिंदा कर दिया है, वो ठीक ठाक सही सलामत हालत के अंदर अपने खेमे के अंदर मौजूद है, तेरा इंतजार कर रही है, जा जाकर अपनी जौजा की खबर ले। और जब ये चला है और मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम के कहने के ऐन मुताबिक अपने खेमे में पहुंचा, देखा कि इसकी जौजा जिंदा है, एक मरतबा सवाल किया कि तेरा इंतकाल हो चुका था, मैं तो तेरे जनाजे की तैयारी के लिए चला गया था और तू यहां पर जिंदा बैठी है, क्या हुआ? कहा कि जब मेरी रूह परवाज कर रही थी, मैंने देखा कि एक वजीह, खूबसूरत, मुनव्वर चेहरे वाली शख्सियत आई और मलकुल मौत के जो मेरे जिस्म से रूह को जुदा करके ले जा रहे थे उन्हें रोका। उन्हें रोक कर कहा कि ये मेरी जायरा है, ये मेरी जियारत के लिए आ रही थी, इसके बदन में इसकी रूह को वापस पलटा दे। और परवरदिगार आलम से मैंने गुजारिश की है और खुदा ने उस गुजारिश को कबूल किया है और इससे जिंदगी में मजीद 30 साल की उम्र इनायत कर दी गई है। और हमारे जायरीन का एक हक हमारी गर्दनों पर होता है। कौन है ये? एक मोमिना मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम की जियारत के लिए आना चाहती है और इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की जियारत पर अभी आई नहीं है, सिर्फ अजम रखा है और रास्ते में है, सफर में है और उसका इंतकाल हुआ बीमार होकर। और मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम, अच्छा अब वो जैसे उसने खद्दो खाल बताया ना, मौला का चेहरा ऐसा, यानी जो आई थी हस्ती उनका चेहरा ऐसा, उनके उनकी जुल्फे ऐसी, उनका अमामा ऐसा, तो वो शख्स समझ गया कि मेरे मौला का जिक्र कर रही है। एक मरतबा वो अपनी जौजा से कहता है कि देख, अगर मैं अपने मौला से तुझे मुलाकात कराऊं, यानी जिनका तू जिक्र कर रही है उनसे अगर तेरी मुलाकात करवा दूं तो क्या तू उन्हें पहचान लेगी? कहा, अब भी ना पहचानूंगी। अगर, अब ये मैं जुमले रिवायत की अर्ज कर रहा हूं, अगर मैं उनका चेहरा न भी देखूं, सिर्फ उनकी आवाज भी सुनूंगी तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। एक मरतबा उसे लेकर चले, जब मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम की बारगाह ही में पहुंचे थे, अभी पहुंचे ही थे कि दौड़ कर वो खातून अपने आप को मौला सज्जाद अलैहि सलाम के कदमों में गिरा लेती और कहती है, खुदा की कसम यही वो शख्स थे कि जिन्होंने आकर मलकुल मौत से कहा कि मेरी रूह मेरे जिस्म में पलटा दे। साहिबे विलायत कुबरा रखने वाले, इमाम मासूम, मनसब इमामत पर फाइज, मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलातो व सलाम का इख्तियार और उनका तसर्रुफ देख रहे हैं अजीजाने मोहतरम। अब इस एक वाकये के अंदर नहीं मालूम कितने सारे पैगाम थे। नंबर एक, अपने मौला पर तवक्कुल करना सीखो, अपने मौला पर यकीन रखना सीखो, अपने मौला की मोहब्बत को अहमियत देना सीखो। ये बेकार की चीज़ नहीं है, ये बेकार की बातें नहीं है। जो कभी कहा जाता है ना कि मौलाना आप क्या मवद्दत की बात करते हैं, कोई काम की बात भी करें, आप क्या मोहब्बत अहले बैत की बात करते हैं, कोई काम की बात करें, मुझे बतलाइए क्या ये जो बात हुई इससे क्या जाहिर होता है कि मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत कोई हल्की चीज है? नहीं, अहले बैत अथार इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसकी बहुत अहमियत है अहले बैत की निगाहों में। और अहले बैत अथार की विलायत और उनका तसर्रुफ, उनका इख्तियार, इमाम अलैहिस्सलाम किसी के हालात से बेखबर नहीं है। हम सब के हालात को मौला और आका अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम तो गाफिल हो सकते हैं उनसे, वो हमसे कभी गाफिल नहीं। और उसके बाद मलकुल मौत को ये कहना कि जो तुम इसकी रूह ले जा रहे हो, किसके हुक्म से ले जा रहे हैं मलकुल मौत? मलकुल मौत अपनी मर्जी से आकर किसी की रूह कब्ज करता है? मलकुल मौत तो उस वक्त तक किसी के पास नहीं आता जब तक उसे अल्लाह की इजाजत ना मिल जाए। अल्लाह की इजाजत से मलकुल मौत आया है। मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं कि मैंने परवरदिगार आलम से बात कर ली है, मैंने उससे गुजारिश कर दी है और खुदा ने उस गुजारिश को कबूल कर लिया है। इसकी जिंदगी में 30 साल का इजाफा हो गया है, इसकी रूह इसके जिस्म में पलटा दो, इसलिए कि यह मेरी जायरा थी, इसका हक है मेरी गर्दन पर। मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम अर्ज कर रहे हैं, यकीन बढ़ाएं अपना। हम बहुत सी मरतबा ये कहते हैं, अब चले मैं इस वाकये के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, बस एक ये मैंने अर्ज कर दी, दो जुमले मैंने इसके एतबार से अर्ज कर दिए। अगर इसे मजीद अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये और फैल सकती है बात, लेकिन हम इसको यहीं पर रोकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलातो वस्सलाम का वो तसर्रुफ है कि जो इस अंदाज से कौन के अंदर, इस जिंदगी के अंदर, किसी की हयात के अंदर इस तरह से मौला को परवरदिगार आलम ने अता किया है। अब यकीनन मैं फिर ज़ियारत जामिया के एक दो जुमले अर्ज करना चाहता हूं। मेरा मेरी ख्वाहिश है, मेरा दिल है कि वो जुमला मैं जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जो ज़ियारत जुमला का, ज़ियारत जामिया का जुमला चीख चीख कर पुकारता है, बिकुम युनज़िलुल गैस व बिकुम युमसिकु समा अन तका अलल अर्ज, कि आप ही के सदके में तो बारिश बरसती है मौला, अरे आप ही के वास्ते और आप ही के सदके में तो ये आसमान टिका हुआ है और रुका हुआ है कि टूटकर जमीन पर नहीं गिर जाता। जरा सोचिए कि क्या है मकाम इमामत। और दो वाकयात मैं आपकी खिदमत में इमाम की तसर्रुफ के एतबार से ऐसे अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर क्या है, जिंदगी दे रहे, अपना इख्तियार बतला रहे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के केस के अंदर या इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ कि हारून है और इमाम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर दस्तरखान बिछाकर लोगों के दिलों से इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उतारने के लिए, यकीनन लोग मौला से मवद्दत मोहब्बत रखते हैं और ये चाहते हैं कि इमाम की मवद्दत और मोहब्बत लोगों से छीन ले। अच्छा, किसी का क्या इख्तियार कि मौला की मोहब्बत किसी के दिल से निकाल ले। मीसा में तम्मार के दिल से तो आखिरी वक्त तक मोहब्बत निकाल ना सके कोशिश करने वाले। खैर, मौला इमाम काजिम अलैहि सलाम है, जादूगर को बुलाया, शोबदाबाज को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा कुछ करना है कि नाउजु बिल्लाह मिन ज़ालिक, देखने वाले मैं लोगों को बुलाऊंगा और इज्जतदार लोगों को बुलाऊंगा, मुअज्जज़ीन को बुलाऊंगा, उमराओं को बुलाऊंगा, साहिबान इख्तदार लोगों को बुलाऊंगा और उनके सामने तूने कुछ ऐसा करना है कि नाउजु बिल्लाह मिन ज़ालिक मूसा काजिम अलैहि सलाम शर्मिंदा हो जाए या नाउजु बिल्लाह मिन ज़ालिक इनकी मोहब्बत और इनकी इज्जत के अंदर हम कमी करने की या करवाने की कोशिश कर सकें। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम तशरीफ लेकर आए, दस्तरखान पर मौजूद है। जैसे ही तशरीफ रखते हैं मौला दस्तरखान पर, इस शोबदाबाज ने कुछ ईवल स्पेल्स अपनी जुबान से जारी किए, कुछ ऐसी चीजें पढ़ी, शैतानी कलिमात जारी किए कि जिनके बाद रोटी हवा में उड़ती थी और मौला से दूर हो जाती थी और मौला जैसे उस रोटी की तरफ हाथ बढ़ाते थे वो रोटी हवा में उड़ती थी और मौला से दूर हो जाती थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने हारून से कहा कि देख अपने इस दोस्त को समझा ले कि जो कोई भी है ये कर रहा है इसलिए कि फैसला अगर हमने किया तो वो फिर रिवर्सिबल नहीं होगा, वो वापस नहीं पलटेगा। एक मरतबा ये सारे कहकहा लगाने लगे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक और इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर अपना इख्तियार दिखलाया। वहां पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने मुतवक्किल के सामने जो अपना इख्तियार दिखलाया था वो एक इख्तियार, यहां पर मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दिखलाया एक इख्तियार, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दिखला रहे और सामने जैसे ही मौला ने अपने चेहरे अकदस को उठाया है तो सामने कालीन था, कालीन पर बना हुआ तस्वीरी शेर था, एक शेर बना हुआ था कालीन पर, शेर की तस्वीर बनी हुई थी। इमाम अलैहिस्सलाम की ये जुमले की जो रिवायत ने रिकॉर्ड किए, या असद अल्लाह खुज अदू अल्लाह, ए अल्लाह के शेर अल्लाह के दुश्मन को आ ले, ए अल्लाह के शेर अल्लाह के दुश्मन को दबोच ले, पकड़ ले। और देखते ही देखते अभी मौला के अल्फाज मुकम्मल ना हुए थे, तस्वीर में से शेर निकला, वो कालीन शेर बन गया, वो तस्वीर शेर बन गई और बाहर आकर उस शोबदेबाज को निगल लिया। हारून ये मंजर देखकर बेहोश हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सका, खौफ ज्यादा इतना हो गया कि उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया, बेहोश हो गया। और जब होश में आया है तो कहता है कि ए मूसा इब्ने जाफर, इसे पलटा दे, इस शेर को हुक्म दे कि इसे वापस उगल दे, ये जो निगल गया है इसे कह दीजिए कि उगल दे। मौला इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम जानते हैं क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं कि अगर मूसा के असा ने फिरौन के सांपों को जो निगला था अगर वो भी उगल देता तो मेरा शेर भी तेरे जादूगर को उगल देता। इसके माना क्या हुआ कि जो वहां पर जो मूसा और फिरौन का आपस में जो हुआ तो फिर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को फेंका और वो असा अजदहा बन गया और उस अजदहे ने उन सारे के सारे सांपों को निगल लिया, अगर उस सांप ने उस अजदहे ने उन सांपों को उगल दिया होता तो ये मेरा शेर भी तेरे जादूगर को उगल देता। यानी कि वहां पर जो था वो भी हकीकत और ये जो हुआ वो भी हकीकत। लोग कमाल के लोग हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के मोजिजे को तो कबूल करेंगे मगर मेरे शेर वाले मोजिजे को हर कोई कबूल नहीं करेगा, फकत वही कबूल करेगा कि जिसके दिल में ईमान का नूर रोशन होगा और जिसके दिल में शक की बीमारी होगी वो इस वाकये के बाद सवाल करना शुरू कर देगा, वो शक में मुब्तला हो जाएगा, उसकी रूह को चैन और सुकून और इत्मीनान नहीं आएगा। लेकिन जिसके दिल में ईमान का नूर जल रहा होगा उसके यकीन में और इजाफा हो जाएगा, इसको इसके ईमान में और तरोताजगी पैदा हो जाएगी। अब आ जाइए, मैं इसके हवाले से दो जुमले अर्ज करना चाहता हूं। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, या असद अल्लाह, اے اللہ کے شیر، مولا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے شیر کی تصویر اس اللہ کے دشمن کو آ لے؟ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ اے شیر کی تصویر، امام نے فرمایا یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر. نعوذ باللہ من ذالک، مولا شیر کی تصویر کو شیر کہہ رہے ہیں. یا یہ ماننا پڑے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت حال سے گفتگو نہیں کر رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہہ رہے ہیں کہ اے شیر، جبکہ شیر کی تصویر کہنا چاہیے. لیکن یہاں تو وہ والی بات ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو صرف سچے نہیں ہیں، یہ سچوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں وہ ولایت اور وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ پانی کو برف کہہ دے تو وہ برف بن جائے، سونے کو پتھر کہہ دے تو پتھر بن جائے، پتھر کو سونا کہہ دے تو وہ سونا بن جائے، ہیرا بن جائے. یہی وجہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اسد اللہ، یہاں پر اسد کی دال کا ختم ہونا نہیں تھا، وہاں پہ تصویر تصویر نہ رہی، اپنی حقیقت کو تبدیل کر لیا، اور جیسا موسیٰ کاظم نے کہا تھا تصویر ویسا بن گئی، یعنی کہ شیر بن گئی، اور شیر بن کر باہر نکلی، اور امام موسیٰ کاظم یعنی کہ حجت خدا، حجت الہی، خلیفۃ اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اس جادوگر کو نکل لیا. اور دوسری بات، امام علیہ السلام کے بیٹھے بیٹھے، امام علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا کہ اس جادوگر نے، اس شوبدہ باز نے جو کیا وہ کر پایا؟ امام علیہ السلام والسلام وہیں روک دیتے؟ امام علیہ السلام والسلام کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی طاقت کے ہوتے ہوئے، کیوں جادوگر اپنا جادو کر پایا؟ کیوں شیطانی طاقتوں کو استعمال کر سکا؟ بہت بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ پروردگار نے کسی کو مجبور نہیں رکھا ہے، اللہ نے سب کو مختار پیدا کیا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اچھا ہوا تو بھی اللہ نے کیا، برا ہوا تو بھی اللہ نے، نعوذ باللہ. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اگر شہید ہوئے تو یہ اللہ نے کیا، نعوذ باللہ، کسی کی غلطی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک. انسان کو خدا نے مختار پیدا کیا ہے، اگر مجبور اور جبر رکھا ہوتا پروردگار عالم نے، ہم جبر کے قائل تو نہیں ہیں، اگر جبر ہوتا تو سزا اور جزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، پھر لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. کیسی جزا، کیسی سزا، یہ تو پروردگار نے جو چاہا ویسا ہی ہوتا رہا. اگر جزا دینی ہے تو اس بات پر دو کہ انسان کا کمال ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے کچھ کیا، اور سزا دینی ہے تو اس بات پر دو نا کہ انسان نے یہ غلطی کی کہ اختیار رکھتے ہوئے بھی غلط کام کیا. لہذا پروردگار عالم نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، جبر کا قائل نہیں ہے اللہ، مجبور نہیں رکھا. اگر مجبور رکھا ہوتا تو وہ روٹی اٹھا ہی نہ سکتا، روٹی امام کی میزر مبارک، مولا کے دست مبارک سے دور کر ہی نہ پاتا. یہ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جیسے پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے جو چاہے کرے، پھر فیصلہ اس کی ذات سے ہوتا ہے. ابھی جو جرم اس نے نہیں کیا، اس کی سزا کیسے دی جائے؟ جب اس نے جرم کر لیا، یعنی کہ مقام امامت کی شان میں گستاخی کی، اب سزا کیا ہوگی وہ بھی بتلا دیا، فیصلہ پروردگار عالم نے. یہ ان موارد میں سے ہے، یہ ان سچویشنز میں سے ہے کہ جو سچویشن ہر جگہ پہ کریٹ نہیں ہوتی، یہ سچویشن بہت کم جگہوں پہ کریٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر فیصلہ دین اینڈ دین ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کچھ ایسی ریڈ لائنز ہیں کہ جنہیں اگر انسان کراس کرتا ہے تو پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، وہ الگ، دنیا میں بھی میں لوگوں کو بتلاؤں گا کہ اگر میرے نمائندے یعنی کہ امام معصوم یعنی کہ منصوص من اللہ، امام علیہ السلام کی شان میں اگر گستاخی کی، تو اگر سب کے سامنے کی ہے تو اس کا فیصلہ سب کے سامنے ہوگا. اور یہی ہوا، اس کو نگل لیا. یہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فضیلت سامنے آتی ہے کہ یہ سچوں کے ایسے سردار ہیں. عام سچوں میں اور سچوں کے سرداروں میں فرق ہے. دنیا کے عام مسلمان، عام مومنین، یہ عام سچے ہیں، یہ سچے ہیں جو وہی بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، صرف سچی بات کرتے ہیں اس لیے سچے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سچوں کے سردار ہیں نا، ان کی شان عام لوگوں سے بہت بلند ہے. ان کا مقام اور مرتبہ اور منزلت عام لوگوں کی طرح کا نہیں ہے، بلند ہے. اس لیے کہ عام انسانوں کی، عام سچوں کی نشانی یہ ہے کہ وہی بولتے ہیں کہ جو سچ بات ہو، اور سچوں کے سرداروں کی یہ نشانی ہے کہ جو بول دیا کرتے ہیں پروردگار اسے سچ کر دکھایا کرتا ہے. اتنا اپنی زبان کو مشیت الہی کے عین مطابق چلاتے ہیں, اللہ کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی مرضی سے ہٹ کر نہیں ہوتا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ شان ہے, ان کا یہ طریقہ ہے. لہذا عام سچے وہی بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے, اور سچوں کے سردار انہیں کہا جاتا ہے کہ جو بول دیا کرتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. وہ واقعہ تو بہت مشہور و معروف ہو گیا, یہ مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں نعوذ باللہ آقا و مولا کو شرمندہ کرنے کے لیے کچھ دوست ایک تابوت کے اندر اپنے زندہ دوست کو لٹا کر لے کر آتے ہیں تابوت بند کر کے, اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں علی علیہ السلام کے پاس لے جائیں گے اٹھا کر تابوت میں, اور یہ تابوت ان کے سامنے رکھ دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یا علی جنازہ پڑھا دیجیے, اور جیسے ہی علی جنازہ پڑھا دیں تو تم ہنستے ہوئے اور کہکہ لگاتے ہوئے کھڑے ہو جانا تاکہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شرمندہ کیا جائے یا نعوذ باللہ من ذالک ان کا مذاق اڑایا جائے. تم نے سمجھا کیا ہے علی کو؟ یہی تم نہیں جانتے, تم مقام علی ابن ابی طالب سے واقف بھی نہیں ہو, اور اگر واقف ہو اس کے باوجود بھی کرتے ہو تو پھر پروردگار عالم تمہیں بتلائے گا کہ علی کا مقام کیا ہے. اور مولا کائنات علیہ السلام کے پاس جب لے جا کر جنازہ رکھا ہے نا, یعنی جنازہ نہیں تابوت رکھا ہے کہ جس کے اندر زندہ دوست لیٹا ہوا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی جنازہ پڑھا دیں. امام نے پوچھا, تین مرتبہ پوچھا کہ اس کی جنازہ پڑھا دوں, اور ہاں کہا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا ہوگا کہ جیسے عموماً نماز جنازہ سے پہلے فرماتے ہیں الصلاۃ لہذا المیت, کہ نماز اس میت کے لیے پڑھی جاتی ہے, اشارہ کر کے یا معین کر کے جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کسی جنازہ کسی میت کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے کسی کے لیے میت نکل جائے اور پھر پروردگار عالم اسے پورا نہ کرے؟ اسی لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہہ دیا کرتی ہیں وہ سچ ہو جایا کرتا ہے. مولا کائنات علیہ السلام نے یہ جو بار بار تکرار کی اور سوال کیا بار بار, یہ وارن کر رہے تھے کہ دیکھو باز آ جاؤ. اور آ جائیے مولا رضا علیہ السلام, آقا و مولا سرکار ابو الحسن, انیس النفوس, شمس الشموس, مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا, مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کی خدمت میں لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آقا, آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے, قحط کا دور ہے, قحط کا زمانہ ہے. تو امام علیہ السلام نے ایک وقت زمان و مکان معین کیا اور لوگوں سے کہا کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے جمع ہوں گے اور دعا کریں گے بارش کے لیے. اور سے سنیے گا, یہ مناقب کے اندر بھی ہے, ابن شہر آشوب نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو, اور عیون اخبار رضا کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے صاحب کتاب نے. اب ایک مرتبہ مولا رضا علیہ السلام نے دعا فرمائی, بادل آئے اور بادل برسنا شروع ہوئے. امام علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی بادل برسنا شروع ہوئے تو لوگ دوڑ دوڑ کر اپنے گھروں کو جانے لگے. مولا نے روکا, مولا نے کہا ذرا ابھی رک جاؤ, ذرا ٹھہر جاؤ, اس لیے کہ یہ ابھی وہ بادل نہیں ہے کہ جو تم پر برسنے کے لیے آئے ہیں, یہ دوسرے علاقے جا رہے ہیں, یہاں سے تو صرف یہ گزر رہے ہیں, یہ پاس بائے ہو رہے ہیں یہاں سے. اور دوسرے بادل آئے وہ بھی برس رہے تھے, پھر مولا نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے, پھر اور بادل آئے وہ کب فرمایا مولا نے یہ تمہارے نہیں ہے, یہاں تک کہ 10 ایسے ٹکڑے آئے بادلوں کے کہ جو برس تو رہے تھے مگر مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے تمہارے لیے نہیں, بلکہ یہ کسی اور علاقے کی طرف جا رہے ہیں. اور جیسے ہی امام علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ دیکھو اب جو بادل آ رہے ہیں یہ تمہارے لیے آ رہے ہیں, لہذا سارے کے سارے اب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جائیں, خدا کا شکر ادا کر کے یہاں سے جائیں, اور یہ بادل اس وقت تک نہ برسیں گے, نہ گھبراؤ, یہ بادل اس وقت تک نہ برسیں گے جب تک ہر ایک فرد اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے. کیا تصرف ہے, کیا ولایت اور اختیار ہے پروردگار کی جانب سے امام معصوم علیہ السلام کے لیے. اور امام معصوم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اور یہ سارے کے سارے اندر گئے, دعا قبول ہوئی, لوگوں نے شکر ادا کیا اور بارش برسی. جب یہ بارش برس گئی تو اس مجمع کے اندر کچھ ایسے افراد موجود تھے کہ جو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزے کو دیکھ کر بجائے یہ کہ یقین کی طرف آتے, وہ مزید اور نفاق کی طرف چلے گئے, اور زیادہ مرض کی طرف چلے گئے, ان کے مرض میں اضافہ ہو گیا, یہاں تک کہ مولا سے حسد رکھے اور مامون کے پاس آئے اور مامون سے بادشاہ وقت سے کہا اے مامون تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، علی ابن موسیٰ رضا کو چھوٹ دے کر، اور کچھ ہی عرصے کے اندر تجھے پتا چل جائے گا کہ لوگ سارے کے سارے علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے اور تجھے کوئی نہیں پوچھے گا. اور اس بات نے ذرا سا اسے ہلا دیا. اچھا خیر، اب ہم یہاں پر مامون اور رشید کے بارے میں تو گفتگو نہیں کر رہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ وہ کیا تھا اور اس کے کیا عزائم اور وغیرہ وغیرہ، اس طرف بالکل بھی نہیں. اس نے طے کیا کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بھری محفل کے اندر ایسا سینیریو کریٹ کیا جائے کہ نعوذ باللہ ان کی عزت میں کمی واقع ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت اتر جائے. اچھا یہ محبت اتر جائے، محبت آ جائے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے، یہ تو پروردگار عالم کا فیصلہ اور یہ نصیب نصیب کی بات ہے. ہدل للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ نقن علی اللہ مقامہ الشریف ونور اللہ مرقدہ اس کا اس طرح سے مفہومانہ ترجمہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہدل للمتقین کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے، کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں نجات کی فکر ہے، جنہیں اپنی نجات کی پڑی ہے، جنہیں اپنی نجات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری نمازیں بچا لیں گی، ہمیں ہمارے روزے بچا لیں گے، ہمارے اعمال بچا لیں گے، اور ہمیں ہمارا حج اور خمس اور زکات اور یہ سب کچھ بچا لے گا، وہ تو مطمئن ہے، وہ مطمئن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے ہدایت دوں گا کہ جو نجات کی فکر رکھے گا، جس سے نجات کی فکر ہوگی وہ پروردگار عالم سے ہدایت پائے گا قرآن کریم کے ذریعے سے. یہاں مولا رضا علیہ السلام ہے، اور ایک مرتبہ حمید ابن مہران یا حمید ابن مہران نام ہے اس شخص کا کہ جو امام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی اس نے اسی طرح کے ایک شعبدے باز کو بلایا کہ جس طرح کے جادوگر کو ہارون نے بلایا تھا اپنے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، اور یہاں پر حمید ابن مہران یا حمید ابن مہران نے بلایا امام رضا علیہ السلام کے لیے. انداز وہی ہے کہ جیسے مولا رضا علیہ السلام دستے مبارک بڑھاتے ہیں روٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے، سرک جاتی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کو حمید ابن مہران، حمید ابن مہران نے یہ کہا کہ یہ آپ کا تو کمال نہیں ہے کہ بارش آ گئی، یہ تو جو مسلمان اور جو مومن آئے تھے ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. استغفر اللہ، یہ آپ کا تو کمال نہیں ہے، نعوذ باللہ، حمید ابن مہران کہتا ہے. امام علیہ السلام مسکرائے، کچھ جواب نہیں دیا، امام نے کچھ نہیں فرمایا، کہا کہ یہ کمال نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا. حمید ابن مہران کہتا ہے کہ میں اس معجزے کو نہیں مانتا. معجزہ تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ تصویر میں بنے ہوئے اس شیر کو حکم دیں کہ یہ باہر آئے اور مجھے نکل جائے. یہ بالکل الگ واقعہ ہے کہ جو انہوں نے اخبار کے اندر اور مناقب ابن شہر آشوب کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ جو اس سے پہلے والا ساتویں امام علیہ السلام والا واقعہ تھا وہ منتخب ترہی کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے دیکھا، نظر فرمائی، قالین پر دو شیر بنے ہوئے تھے، اور مولا نے دونوں کی طرف اشارہ فرمایا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس اللہ کے دشمن کو، اس فاسق کو آ کر دبوچنے لے لیں. وہ دونوں تصویریں شیر بن کر باہر آئیں، اور جیسے باہر آئیں حمید ابن مہران کو چیرا پھاڑا اور کھا گئے، یہاں تک کہ جو زمین پر اس کا خون گرا تھا وہ بھی سارا کا سارا صاف کر کے اور چلے گئے. جاتے جاتے مولا کی خدمت میں آئے، قدموں میں اپنے سر کو رکھا اور کہا کہ مولا اگر آپ اجازت دے تو مامون کا بھی قصہ یہی تمام کر دیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ قضا اور کچھ قدر ایسی ہے کہ جس کا پورا ہونا ضروری ہے، کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جن کا پورا ہونا ابھی ضروری ہے، لہذا ابھی مامون کو چھوڑ دیا جائے. کہا کہ پھر مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جا کر پلٹ کر وہیں پر چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے، اور وہ چلے گئے اور دوبارہ سے تصویر بن گئے. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ مامون اس جملے کو سن کر بے ہوش ہو گیا، जैसे ही मामून बेहोश हुआ, जब उस पर पानी का छिड़काव किया गया और उसको होश में लाया गया, जब वो दोबारा से होश में आया है तो एक मर्तबा कहता है कि मुझे माफ करें, मैं जानता हूं आपका मकाम क्या है, लेकिन अब आप कहें कि मैंने क्या करना है और क्या हुक्म है आपका, जैसे आप कहेंगे वैसे ही। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जो कर रहे हैं खुदा के हुक्म से कर रहे हैं, अगर हम ये सारा का सारा तख्ते खिलाफत लेना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारा इख्तियार है इस पर, इस सब पर, और परवरदिगार आलम ने हमें जमीन का खलीफा बनाकर भेजा है, ये तो उसकी मर्जी है कि हम तेरे दरबार में हैं, ये उसकी मर्जी है, जैसे उसकी मर्जी है वैसे वैसे हम चल रहे हैं और अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। अज़ान मोहतरम, ये ऐसी निशानियां हैं कि जिन निशानियों के बाद कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। अब मैं यहां पर रुककर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, ये जो वाकयात और ये जो रिवायतें आपने सुनी समाअत फरमाई, इसके नतीजे के अंदर क्या समझ में आती है बात, फहमे हदीस क्या है इससे? अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम देख लीजिए जा बजा मजलूमियत आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के वाकयात रिवायतों के अंदर भरे हुए, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि जहां पर आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने यह बात बतलाई है कि देखो हमें मजलूम जानना मजबूर ना समझना, हम मजलूम जरूर हैं मगर हम मजबूर नहीं हैं, इसलिए कि हमारे पास जो इख्तियार है उस इख्तियार का भी तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मौला ने ये माजिज और ये रुख भी मौला ने दिखलाया हुक्म खुदा से, ताकि लोग जाने कि इतना इख्तियार रखने के बाद, इतनी विलायत और इतनी ताकत और इतना तसर्रुफ रखने के बाद भी अगर ये खामोश हैं और इनके हाथों में हमें हथकड़ियां नजर आती हैं, इनके पांव में बेड़ियां नजर आती हैं, इनके गले में खारदार तौक अगर नजर आता है, तो दुनिया के किसी हाथों में ये ताकत और ये जुरअत नहीं है कि इन हस्तियों को हथकड़ियां पहना सके, मां सिवाय इसके कि खुद उनकी रजामंदी हो। उनकी रजा क्यों है? क्योंकि खुदा की मसलहत है इस बात में, क्योंकि खुदा चाहता है इस आलम में देखना कद शाह इन्नल्लाह कद शाह अन यरानी कतीला, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जुमला है, परवरदिगार आलम ने मुझे मकतूल देखने का इरादा रखा है, खुदा चाहता है कि मुझे इसी आलम में इसी मंजिल पर देखे, और यही है कि मेरी शहादत से जो परवरदिगार आलम चाहता है वो होगा, लिहाजा हुसैन इब्न अली को शहादत की मंजिल से गुजरना है, और ये हुक्म खुदा है और ये अम्र इलाही है। लेकिन दूसरी जानिब इख्तियार क्या है अहले बैत अतहार का? मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम शाम से मौला जब रिहाई पा चुके और उसके बाद एक मरतबा फिर कुछ अरसे के बाद, उस दौर के बादशाह का नाम अभी किताबों के अंदर मौजूद है, उस दौर के बादशाह ने करबला के वाकये के बाद रिहाई अहले हरम को मिल गई, उसके कुछ सालों के बाद मौला को फिर से गिरफ्तार किया है। जोहरी ये कहता है कि मैंने देखा मौला के हाथों में फिर से हथकड़ियां हैं, मैं रोने लगा, मैं मौला की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने मौला को देखकर रोना शुरू कर दिया, और जाहिर सी बात है जिसके दिल में सच्ची मवद्दत हो, मौला से इश्क हो, वो मौला के हाथों में हथकड़ियां देखकर रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। ये रोना तो मौला की हथकड़ियों का बयान, बेड़ियों का बयान, गले के तौक का बयान सुनकर रोना उसी को समझ में आ सकता है जो अहले बैत से मवद्दत रखता हो, जिसका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं हो, वो रोने में शक तो कर सकता है मगर उसे रोना समझ नहीं आ सकता, और फिर वो यही सवाल करेगा कि 1400 साल हो गए आपको, आप आज तक रो रहे हैं, हम क्या करें कि खुदा ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहब्बत इनकी नसीब की है ऐसी कि जब इनकी मुसीबत सुनते हैं तो हमें रोना आ जाता है, जब हम इनकी मुसीबत का बयान सुनते हैं तो हमारा दिल नरम हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोहरी को इमाम ने फरमाया कि तू क्या समझता है कि दुनिया ने हमें हथकड़ियां पहनाई हैं, और यह कहकर मौला ने हथकड़ियों की तरफ इशारा फरमाया और मौला के दस्ते मुबारक हथकड़ियों से आजाद हो गए, और उसके बाद मौला ने कहा कि दो मंजिलें मैं इनके साथ चलूंगा, उसके बाद मैं मदीना वापस आऊंगा और मेरी तेरी मुलाकात फिर मदीना में होगी। और दो दिन गुजरे और वो सिपाही जो इमाम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे शाम दोबारा, वो मदीना में देखे गए कि वो ढूंढ रहे हैं किसी को। किसे ढूंढ रहे थे? मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे थे। और जोहरी ने पूछा कि क्या तलाश कर रहे हो? कहा कि अब मुख्तलिफ अंदाज से रिवायतें मिलती हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ हथकड़ियां और वो बेड़ियां और वो जो भी मौला को कैद करने का सामान था वो सवारी में रह गया, मौला वहां पर मौजूद न थे, मौला मदीना तशरीफ ले आए थे अपने खास इख्तियार से, इख्तियार इमामत को इस्तेमाल करते हुए। तो जहां पर ये बतलाना है कि हमारा इख्तियार क्या है, उसका इजहार करना है ताकि लोगों को पता चले कि हम मजबूर नहीं हैं, हम मुख्तार हैं, और अपने इख्तियार से इन मजालिम को हमने बर्दाश्त किया है और उन पर सब्र किया है। बल्कि आम अफराद वो हैं कि जो मुसीबतों पे सब्र करते हैं, नेमतों पर शुक्र करते हैं। हुसैन इब्ने अली वो है कि जिन्होंने मुसीबतों पर भी खुदा का शुक्र अदा किया है, और मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम का भी है। इमाम हुसैन अलैहि सलाम कहते हैं बहन बद्दुआ ना करना, इसलिए कि मौला हुसैन जानते हैं कि बिनते अली की जुबान अगर बद्दुआ के लिए उठी तो फिर दुनिया को, जमीन को फना होने से कोई नहीं बचा सकता, इसे खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। ये इनका इख्तियार है, और उस इख्तियार का इजहार पीर बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने दरबारे शाम में या दरबारे कूफा में फरमा दिया था कि जब शोर इतना ज्यादा था, बीबी खुतबा इरशाद फरमाना चाहती थी और बीबी ने उस खुद कहा कि खामोश हो जाओ, और उसके बाद इतनी खामोशी तारी हो गई थी कि हैवानों के गलों में बंधी हुई घंटियां तक हरकत करना रुक गई थी और उनकी भी आवाज आना बंद हो गई। कैसा इख्तियार है, कैसा तसर्रुफ है इनका। ये परवरदिगार आलम ने इन्हें अता किया है, ये मनसब रखते हैं खुदा ताला का खास। बस अजीजान मोहतरम, इस इख्तियार के बाद भी अगर ये मजालिम इन पर आए हैं तो ये खुद इन्होंने कबूल किए हैं ताकि खुदा ताला का दीन बच जाए, ताकि जो भी परवरदिगार आलम की मर्जी है, उसका जो अमर है, उसका निफाज हो सके। और यही वजह कि मौला सैयद सज्जाद ने कहीं पर उफ तक ना किया, जो मजालिम ढाए गए उसे बर्दाश्त करता रहा मेरा आका, उसे बर्दाश्त करता रहा मेरा मौला, यहां तक कि मौला इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि रात की तारीकी में मौला अपने घर से चलते थे, एक दरख्त के नीचे मौला जाकर बैठते थे और अमामे को सर से उतार देते थे, और देखने वाले ने जब मौला का पीछा किया तो देखा कि मौला इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि मौला की अबा मौला के दोष से उतर गई, इतना शदीद गिरिया किया है मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने। हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि शोहदा के सर कटे हुए नोके नेजा पर चढ़ाए जाते थे और नेजों सरों वाले नेजे आगे आगे हैं, मौला सैयद सज्जाद उनके पीछे हैं, बीबियां मौला सैयद सज्जाद के पीछे हैं और बेकजावा ऊंटों पर हैं बीबियां, मगर अजीजो सारे सर नोके नेजा पर थे। एक सर ऐसा था कि जिसके बारे में यह मिलता है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दरबारे कूफा में इब्ने ज़ियाद के कदमों में तश्त था और तश्त में रखा हुआ मौला हुसैन का सर था, और कभी अपनी छड़ी से मौला के लबों के साथ गुस्ताखी करता था, कभी मौला के दंदाने मुबारक से गुस्ताखी करता था, यहां तक कि एक ज़ईफ़ शख्स खड़ा हुआ रसूल के जमाने का सहाबी था और उसने खड़े होकर कहा कि इब्ने ज़ियाद तुझे शर्म नहीं आती? अरे यही वो होठ हैं कि जिन्हें रसूल चूमा करते थे, अरे यही वो चेहरा है कि जिसे रसूल ने अपने शानों पर बिठाया था, अरे अपने जुल्फों से खिलाया था, आज क्या वक्त आ गया है, अरे मोहब्बत के नवासे की मजलूमियत पर हमारा सलाम, कल जो दोषे रिसालत पर खेलने वाला था, रसूल की जुल्फों को हाथ में लेने वाला था, आज उसी हुसैन के सर अकदस से, अरे कभी लबों से, कभी दंदाने मुबारक से गुस्ताखी किया थी। हां मगर अजीजो एक सर ऐसा था कि जिसके बारे में मौला सैयद सज्जाद से पूछा गया, सारे सर हमने देखे पहचानने में आ रहे थे मगर एक ऐसा सर था, अरे बड़ा जख्मी था, जख्मों से चूर था, वो सर ऐसा था कि जो पहचानने में नहीं आ रहा था कि किसका सर है। अरे मौला सैयद सज्जाद ने सुना एक मर्तबा रोने लगे, कहा ये वो सर था कि जो नोके नेजा पर न था, हमारे गयूर चचा अब्बास का सर था, ये नोके नेजा पर इसलिए टिकता न था, जब भी नोके नेजा की बुलंदी पर इसे उठाया जाता था मां फूफी बहनों के बेरिदा सर देखता था, अरे अपने कफील होने का ख्याल आता था, अपने चादरों के जामिन होने का ख्याल आता था, हमारा गयूर चचा बर्दाश्त न कर पाता था, अरे खुद को नोके नेजा से गिरा लेता था। लाइनों ने तय किया कि अब ये सर जमीन पर ना आएगा, रस्सियों से बांधा गया, गोले घोड़े के गले में डाल दिया गया, अरे सारे रास्ते अब्बास का सर घोड़े के पांव से टकराता रहा, अब्बास का सर इतना जख्मी हो गया, खून में आलूदा, पहचानने को नहीं। الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، پروردگارہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے ناسوؤں کو بارگاہ سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ ان سسکیوں کو، ان آہوں کو امام صادق علیہ السلام کی دعا کے منظور نظر قرار فرما، پروردگارہ امام کے حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا و آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاه الحسين الشهيد الغريب المظلوم العطشان، اللهم صل على محمد وآل محمد۔